సిస్టమ్ అనుమతిస్తుంది. రూపం తస్యాభిజిగురి రాధాకుండం గిరివర మహోరాధికా మాధవాస పతితానం పావనిభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో మహాభదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయ కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్యనాం గౌమయే. హే కృష్ణ కన్యాసుం దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. తప్తకంచన గౌరంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి విష్ణు ప్రణమామి. ఆ దేవి కాపు భరత హృదయాచ జాచే నిపత్తభూ విదండవతో అసాదన గంధర్వికే తవ గణినీ గణ అంగశ్యామలిం చటాభిరవితో మందీకృతీవాన్ జడ్డం జాగుదరోచి సంవిదతం పట్టం వరస్య శ్రియా బృందారణ్య నివాసినం హృదయ శబ్దామాభినోదం రాధాస్కంద నివేశితో చిత్వాస్తు కామాది తరంగమధ్యే కృపామయీ త్వాం శరణం ప్రపన్న వందే నమస్తే చరణాయ గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయ తదాయ కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ తద్భక్తాయ యం ప్రభ్యజంతమనుపేతమపేతకీర్తనం ద్వైపాయనో విరహ కాతరయా జుహావ పుత్రేతి తన్మయతయా కరవో భునేదు తం సర్వభూతహృదయం త్వయైవాస్మి త్వయైవాస్మి న జీవామి త్వయా వినా ఇతి విజ్ఞాయ రాధీతం మే మాం శరణంతి.
సనాతన గోస్వామీజీ రామేణ సార్ధం మథురాగత్ ప్రణీతే ఇస్ శ్లోక్ మే కుచ్ బతలా రహే హై త్రిబ్రాధయో అన్నం దదుసు నో సుఖాయ. जब मैं राम के सहित अक्रूर के द्वारा जब मथुरा लाया गया तो मेरे वियोग में मेरे अतिरिक्त उनके सुख के लिए कुछ भी कोई आधार नहीं रहा। पहले तो कृष्ण की तो सखियां, राधा जी की तो सहेलियां थी परस्पर, किंतु वो भी अब उस समय परस्पर सुख के आधार नहीं बन सके। सभी लोग विरस में डूब गए। किंतु ये बतला रहे हैं एक ही कि दंत्रवक वध के बाद में कृष्ण वहां आए, 2 महीना रहे, फिर उनकी आधी व्याधि इस विरह की नहीं रही। क्यों नहीं रही? इसलिए दो महीना के बाद में अप्रकट लीला हो गई। अप्रकट लीला में विरह की अनुभूति ऐसे नहीं होती। फिर तो उस समय में केवल भावना का कुछ रहता है, इतना लंबा प्रवास कृष्ण का नहीं होता। इसलिए ये कहें कि अब फिर विच्छेद उतना नहीं घटा, इसलिए उनका वो सब भाव भी दूर हो गया। 2 महीने के बाद ही प्रकट लीला कृष्ण करके अपने सब लोगों को साथ लेकर के चले गए। और फिर एक प्रकाश में कल बतलाया था जो द्वारका चले गए, वहां पर कुछ दिन रहने के बाद ही में फिर वहां पर भी यदवंशियों का ध्वंस की लीला ऊपर से दिखला करके और सब लोगों को लेकर के अप्रकट लीला में प्रवेश कर। और उस समय जो अवतार के उनके जो अंश थे और या जो उनके परिकरों में जो अंश थे स्वर्ग इत्यादि के या और नारायण वैकुंठ इत्यादि के, उन सबको भेज दिया, वो लोग चले गए अपने अपने स्थान। कृष्ण के अंदर में जो नारायण थे वो चले गए, कृष्ण के अंदर में वामन थे वो लोग चले गए, और कृष्ण तो वहीं अप्रकट लीला में रह गए।
तो
तास्ता छपा प्रेष्ट तमेन नीता मैव वृंदावन गोचरेण खनाद्भवत्ता पुनरंग ताशां हिना मया कल्प समाबभूव। इसका तो हमने पढ़ दिया था, हो गया था
ना? नहीं, कल शुरू केवल हुआ, शुरुआत
नहीं हुआ। तास्ता छपा परिष्ट अतमेन नीता वृंदावन में गोचारण के समय में हमार सहित मिलिया मिलित भैया सही रात्रि सकल खनार्धर ने सुखे अतिवाहित हो गया। वृंदावन में हमसे यह रात में जो मिली गोपियां वो ब्रह्मा की रात्रि भी मानो आधे खंड के समान बीत गई, और मेरे विरह में वो रात का कटना भी बड़ा भारी कठिन हो गया, आधा क्षण भी अब
कल्प सदृश।
और मिलन में कोटि कोटि ब्रह्म रात्रियां भी मानो एक क्षण में ही वो बीत गई। इसी को ये बतला रहे हैं, ये सब प्रेम के ऊपर में निर्भर है। जिसको प्रेम और प्रेम में महत्व होता है वो यदि होगा तो ये ऐसा हो सकता है, जिसमें प्रेम नहीं है वो अनुभव नहीं कर सकता। हे अंग पुनरंग, अंग माने जैसे हमारा अंग प्रिय है वैसे ही तुम हमारे प्रिय हो, उद्धव जी को कह रहे हैं। यहाँ पर ये मत समझो जे ये मथुरा की नागरियाँ कह रही हैं, जहाँ से ये आरंभ किया न पारे है
वीरभद्र समझिजन
नहीं, इसके बाद में ये यहाँ पर वो कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं उनसे उद्धव से कह रहे हैं, ये भी उन्हीं से कह रहे हैं। हे अंग, हे मेरे अंग के समान प्रिय उद्धव, बहुत सी रात्रों में मैं उनके साथ में था और मैंने उपलब्धि किया है कि वो सब रातें मिलन में क्षण में वो बीत जाती थी और पुनः वही रातें और वही क्षण एक एक क्षण मानो कोटि कोटि कल्प के समान वो बीतती नहीं। हमारे विरह में ये सब रात्रें कटती नहीं है। साधन स्थिति में इसका कुछ आभास हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देखें, उनकी रात कटती नहीं थी। रामानंद इत्यादि के साथ में नाक घिसते रहते, रोते रहते और रात ही नहीं बीती थी। ऐसे ही यदि कोई साधक हो, साधक को नींद आएगी कि नहीं? जो आराम से खाता पीता और सोता है वो साधक ही नहीं, उनको कोई चिंता ही नहीं। बेकार के लिए घर बार स्वास सब छोड़ा, बेकार सब बेकार। उनको अपने पेट भरन, अपने प्रतिष्ठा, लालसा और ये सब की ही चिंता लगी रहती है। और उन लोगों को चिंता लगी रहती है कृष्ण की। महाप्रभु जी का जीवन आदर्श है इसके लिए। ये खन अर्धत्व में और कल्पमयत्व में एक खन का एक कल्प हो जाना, आइया कल्प को खनत्व समझना, ये सब कृष्ण के प्रेम के ऊपर में निर्भर है। यदि गोपियों जैसा प्रेम होगा तो ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पर चार पहर का दीवा और चार पहर का हीरा, ये आठ प्रहर होता है। चार प्रहर की रात में और चार पहर का, ये आठ याम कहलाते हैं। अष्टदान, अष्ट प्रहर का कीर्तन, अष्ट प्रहर का ये सब होता है अनुष्ठान। ये राष्ट्रीय दिन और रात लगातार कल्प तक चला, तो और लोग क्या किए? और लोग किया क्या? योग माया के प्रभाव से उनको मालूम ही नहीं हुआ, तो दिन रात चलता रहा। और इन लोगों के लिए उतना ही एक कल्प तक रहा। इसके द्वारा भगवत संघ की ये महिमा है। भगवत संघ से ऐसा ही होता है। यदि किसी साधक को भी हो, बिना भाव हुए तो ये होगा नहीं। जब किसी को भाव हो जाएगा तो कुछ कुछ अनुभव आभास कर सकता है उसमें। अब वे जो रात्रि हैं, रात्रियां कौन सी? जिसमें रास हुआ था, जिस समय में शारदीय रात आती है, शारदीय पूर्णिमा की, उस समय गोपियों को विरह बेसी दुख होता है कृष्ण के विरह में। क्यों होता है? उनको याद आती है, उसकी स्मरण होती है जो वो हमारे साथ में ऐसी सुंदर रूप में रास क्रीड़ा किया और हमारे लिए पसीने पोंछ दिए, हमारे पैरों को दबाया, हमारी क्लांति को दूर किया और उनकी सब वार्तालाप संलाप ये सब याद आकर के उनके लिए बड़ा भारी विरह पैदा कर रहा है। जो सुख का कारण होता है वही स्मरण होने पर जब उसके विरह में दुख का कारण बन जाता है। जिस गुरु जी के साथ में सेवा करते हुए इतना आनंद आता है अब वही सब सेवा की का दिन स्मरण करके उनके विरह में दुख होता है। जसोदा जी कृष्ण एक खिलौने के लिए मचल गए ना? जसोदा जी कृष्ण को ठगने की बहुत सी चेष्टा की किंतु ठग न सके, जैसे तैसे उनको कृष्ण को घड़े में चांद दिखाई दिया। मैं लूंगा मचल गए। उन्होंने कहा जिसे वो घड़े में अच्छा मैं निकाल करके देखो, एक सखी को कह करके उसमें मक्खन डलवा दिया और कृष्ण को कहा देखो देखो तो उधर में वो कौन आया, इधर देखने लगे इतने में मक्खन डलवा दिया। इसके बाद में कृष्ण इधर देखने तो मक्खन निकाल लो वो चांद ये लो, तो खाने लगे बड़े प्रेम के साथ। फिर उन्होंने झांक करके देखा तो वही चांद
मक्खन फेंक दिया
और फिर रोने लगे, खाना वो फेंक दिया मक्खन तक जो हमको ये बाल आ रही। फिर उन्होंने कहा अच्छा देखो चांद तो है ठीक तुमसे खेलेगा भी किंतु उसे खेलना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें विष है। मुझे विष कहाँ से आ गया? विष ऐसे आ गया, समुद्र में मंथन हो रहा था, बड़ी अद्भुत अद्भुत चीज निकली। माँ समुद्र को किसने मथा? बाल्य प्रश्न हो रहे हैं। उन्होंने कहा एक तरफ में देवता एक तरफ में दानव, तो उसमें पहले विष निकला, हलाहों को शंकर जी ने पी लिया बोलने लगे। इसके बाद में फिर ये निकला मक्खन निकला, तो इसमें उसके छींटे पड़ गए थे, इसलिए उसके साथ उसको न तो खाना चाहिए न उसके साथ में खेलना चाहिए।
चांद निकला
इसलिए उसका उसमें आ गया। ऐसे करते करते थपकी और लोरी करते 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 अब जब चांद निकलता है और जसोदा जी देखती हैं और कृष्ण चले गए हैं मथुरा, वही उनके शोक का कारण बन जाता है। जो जो लीलाओं से वो उनको प्रसन्न किया, कृष्ण प्रसन्न होते थे, ये प्रसन्न होती थी। मुरली को देखा और विरह में रोने लग गई, तड़फड़ाने लग गई। इसलिए गोपियों की वो सब बातें याद आती हैं, रास की एक एक बातें, रास पूर्णिमा इत्यादि, और विरह में संतप्त हो जाती हैं। ये जो होता है उद्धव हे अंग, इसका कारण मूल कारण है हमारे प्रति उनकी प्रीति और इसका कारण मैं ही हूं। मैं उनका प्रेषतम हूं, मद विषय प्रेम भरे प्रेम से उनकी ऐसी विरह, उनका ऐसा विरह हुआ करता है। हम लोग अपने पर विचार करना चाहिए इन सब चीजों को। हम लोग जिसके लिए आए किस लिए घर छोड़ा? खाने पीने के लिए तो कोई नहीं छोड़ा, आराम के लिए तो कोई नहीं छोड़ा, किस लिए छोड़ा? कृष्ण के लिए ही तो छोड़ा, भगवान के लिए छोड़ा। और हम लोग भगवान के लिए तनिक भी कोई चिंता नहीं, किसके लिए चिंता? अपनी प्रतिष्ठा, अपना आराम, अपना विचार लेकर के बस चिंतित, कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं रहा। हाय कृष्ण अभी तक नहीं मिले, उनकी सेवा नहीं मिली, और उसकी सेवा देने वाले जो वैष्णव और गुरु हैं उनकी भी सेवा में हम तनिक भी कोई रुचि नहीं। गुरु सेवा किसको कहते हैं? गुरु सेवकों से सीखना चाहिए, गुरु सेवक। इसीलिए कहा गया गुरु सेवक है मन अपना, अपने मान्य हैं, कैसे सेवा की जाए, उनको भी बिना गुरु के, गुरु के दिए हुए चीज को वो मूल्यवान समझ, जिनको कुछ मिला ही नहीं और जिन्हें कुछ अनुभव ही नहीं किया, तो वो क्या गुरु को सेवा करेंगे या वो किसी की सेवा करेंगे, वैष्णव उनको अनुभूति ही नहीं है। और जिनको अनुभूति है ना, वो प्राण दे देंगे उसी के बदले में। इसलिए कहते हैं ओह बड़े आश्चर्य की बात है, हे ज्योतिपति आप पर दुख कातर होकर के किस लिए आप यहां पर सबको, उद्धव जी ने कहा आप उन गोपियों को यहां पर क्यों नहीं बिला, इतने रो रहे हैं बिल बिला रहे हैं यार, यहां पर वहां पर द्वारका में 16,000 महिषियां हैं, 16,108 तो और ये 16,108 आ जाएंगे तो इनके लिए महल क्या नहीं बन सकते, सभी कुछ यहां पर हो जाएंगे, आप उनको बुला क्यों नहीं देते, बड़े आश्चर्य की बात है। इतना रोना छटपटाना, उनको संतना तो मिलेगी नहीं मेरे जाने से, इसलिए आप को उचित यही है कि वहीं पर आप बुला लें। बुलाने से क्या होगा हाँ? फूल अपने वृंत में ही पुष्पित और सुरभित रहता है, उसमें सुगंध होती है, और फूल को तोड़ लो वृंत से, वृंत माने उसकी डाली से, तो फिर वो सुगंध और वो उसकी जो प्रस्फुटित होता है अवस्था फूल की, वो मुरझा जाएगा, ये सब नष्ट हो जाएगा। गोपियां वृंदावन में ही सुशोभित है, मथुरा द्वारका में वो मुरझा जाएंगे, उनका सौरभ ही चला जाएगा, इसलिए वहीं पर रहना अच्छा है। यदि मुझे जाना है तो मुझे ही वहां जाना है, उनको नहीं लाना है, इसलिए माता पिता सखियां सखा सब वृंदावन को छोड़ करके नहीं जा सकते, यदि वो छोड़ दें तो वृंदावन ही क्या रहा, इसलिए वो वृंदावन में ही वो रहेंगे, वृंदावन ही है वो, वही वृंदावन है। गोपियों को वृंदावन से हटा दिया जाए तो फिर वृंदावन रह जाएगा, वृंदावन रहेगा ही नहीं। भगवान कह रहे हैं वृंदावन गोचारण मैव वृंदावन गोचारण, वृंदावन निवास पूर्वक, वृंदावन में विहार उपयोगी वेश व्यतीत वह क्रीड़ा और उनका सार विलास यह संभव पर नहीं है, वो वृंदावन में ही संभव है, इसलिए मैं उनको नहीं लाती नहीं लाता। यदि जसोदा को ले आएंगे मान लिया, और मैया को और पिताजी को द्वारका में ले आए, उस समय में देखेंगे जैसे ये वसुदेव और देवकी जो राज रानी और महाराज हैं, कृष्ण की वहां पर कोई भी लीला हो सकेगी, उस रूप में वृंदावन जैसी नहीं होगी, उन महारानी फटरानियों में वहां पर इनका रास इत्यादि संभव कुछ भी नहीं हो सकेगा, इसलिए उनको नहीं बुलाएंगे। माधुर्य को ऐश्वर्य में नहीं लाया जा सकता, और न ऐश्वर्य को माधुर्य भूमि में लाया जा सकता है। गोचारण के द्वारा यहां पर बतला रहे हैं, गोचारण करने के लिए गोप वेश चाहिए, कृष्ण मुकुट पहन करके सोने का तीर धनुष लेकर और हाथ में गदा चक्र पद्म लेकर के गोचारण करने के लिए जाएंगे, ये शोभा होगा? वो तो वन्य वेश में जैसे बेंत हाथ में ले लिए मोर मुकुट और फूलों के ही सब हार बाजू बंद इत्यादि वैजयंती माला, गोप वेश में ही वो सब संभव, इसलिए गोचारण करें। और दूसरे इस रूप में नहीं होगा, इसलिए मैं जाकर के कह देना मैं इसी वेश में, इसी गोपाल वेश में मैं आऊंगा और उनको सुखी करूंगा। अतः पूर्वोक्त दार अकर्तव्य इत्यादि पर्यवसित है। इसलिए ये जो कह रहे हैं ये अकर्तव्यत्व ही हुआ। बलदेव जी ने कहा आप जाना नहीं चाहते, केवल बहका देते हैं। इसलिए हीना मया कल्प समा बहुआ, उनके ये सब केवल बात ही कहा, उनके विरह इत्यादि को उपशम नहीं कर सके। ता नाविदन मई अनुसंग बद्ध धीय स्व आत्मनम दम्भ खेदम यथा समाधौ मुनियो अब्धिताये अब्धितोये नद्य प्रविष्ट इव नाम रूपे। जिस प्रकार से मुनि समाधि दशा में नाम रूप कुछ भी अपना अवगत नहीं होते, अथवा नदियां समुद्र में मिलने के बाद में ये गंगा है, ये जमुना है, ये सरस्वती है, अब नाम रूप और अलग से पानी उनका नहीं रहता समुद्र में, नाम रूप सब कुछ वहीं पर समाप्त हो जाता है जहां मिला। हिमालय से लेकर गंगा सागर तक गंगा का नाम गंगा है, भगीरथ है, जाह्नवी है, सुरसरी है, किंतु जब ही समुद्र में मिल जाती है अब फिर उसका नाम समुद्र में रहता है नहीं रहता। जैसे साधु लोग मुनि लोग समाधि दशा में अपने शरीर का नाम और यह रूप सब कुछ भूल जाते हैं, उसी तरह से ब्रजंगनाएं भी हमारे प्रति दृढ़ आसक्ति के योग से अपने देह इस लोक परलोक सब कुछ को भूल गए। योगियों से भी बहुत बड़ी ऊंची स्थिति। साधक भी क्रमशः भगवान चिंतन करते करते ये सब क्रमशः भूल जाएगा, बाहरी लौकिक व्यवहार इत्यादि सभी कुछ। हम लोग इतने दिनों में कितना भूले हैं ये विचार करो, अपना बाहरी स्थूल रूप, बाहरी गुण, बाहरी अभिमान, ये सब कितने भूले हैं। तो तब से साधन क्या कर रहे, क्या कर रहे हैं हम लोग साधन? देखा जाए तो हम लोग ठीक साधन नहीं कर रहे। सब कुछ भूल जाएगा, कोई अब स्वार्थ नहीं रह जाएगा, कोई दुर्गुण नहीं रह जाएगा, और अपने स्वरूप का कुछ चिंतन होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वही सब कर रहे हैं, उसी की वृद्धि हो रही है, स्थूल विचार शरीर सब कुछ का, आत्मा का कुछ भी साधन जैसा होना चाहिए नहीं होता। यदि कहो जो हम लोगों को कहां सुजोग है, कहां सुजोग है, खाते हैं पीते हैं रहते हैं लोगों से मिलते हैं जुलते हैं सब काम करते हैं, सुजोग कहां? तो उसके लिए कह रहे हैं ब्रजसुंदरियां तो अपने पति पुत्र और संग में रह करके गृह में वास करती थी, सर्वस्व त्यागी आत्म समाधि सिद्ध भगवत भक्तगण तुलना तादर अधिक महात्म की रूप सिद्ध होगा। वो भी तो अपने घर में झाड़ू लगाती थी, सब काम करती थी, इतना होने पर भी यही तो उनका था। हम लोग भी क्रमशः ये सबको भूलेंगे। तेनादपि सुनी च परोरूपी सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। कहते तो हैं सब साधक लोग और कहते हैं बाकवेग क्रोधवेग जिह्वावेग उदरवेग उपस्थवेग इत्यादि दूर करने चाहिए। हम लोग क्या चेष्टा होती है, बल्कि और बढ़ करके कुछ दिनों के बाद में वो प्रबल होकर के साधुओं का संग भी छुड़ा देती है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं गोपियां घर में रहते हुए भी अपने पतियों के साथ रहते हुए लिपना पोतना कूटना जो कुछ था सब करती हैं, किंतु देह की स्मृति नहीं, सब समय भगवत चिंतन। इसलिए वो कह रही है। आत्म समाधि लब्ध जो उत्तम भागवत लोग जो होते हैं ज्ञान मिश्रा वाले, जैसे सनक सनंदन, सनक सनक कुमार इत्यादि, वो लोग देह की स्मृति भूल जाते हैं। देह भी कुछ उनका नहीं रहता, सब समय पंचवर्षीय बालक के समान रहते हैं और वो भी भूले रहते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं उन लोगों से ये गोपियों की महात्मा क्या हुई, अपने पुत्र और सब संसारिक कामों में लगी रहती हैं, उसी से कह रहे हैं। ता नाविदन जान नहीं सकी, भूल गई वो सब कुछ, खटपट नहीं। मननशील जो साधु हैं, जो मन के द्वारा ही चिंतन करते हैं, विषयों से हटा लेते हैं अपने मन को, उन साधुओं से ये कोटि कोटि गुण श्रेष्ठ है। चल रही हैं, मान ले कहीं जा रही हैं, सहज समाधि, मन में बस उन्हीं की, कृष्ण की ही चिंता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग योग नाम रूप जाने ना, ये कौन मुनि लोग। यम नियम, यम नियम मैंने क्या, यम इंद्रियों को
समदम,
समदम यम नियम में भी वही यम सम और दम का ही यहां पर यम और नियम। आसन प्राणायाम, आसन माने एक आसन पर बैठ करके चिंतन करना। प्राणायाम गोपियां चाहे तो लाखों कोटि वर्ष एक आसन पर ही बैठी रह जाएंगी। प्राणायाम प्रत्याहार विषयों का प्रत्याहार, प्रति आहार प्रत्याहार माने मन उधर जाता है फिर ले आना। गोपियां क्या करती हैं, मन जा रहा है कृष्ण के तरफ में, उनको बटोर करके इधर ला रही हैं विषयों की तरफ में, और विषयों की तरफ में उनका मन नहीं, स्वाभाविक गति से कृष्ण की तरफ में जा रहा है। धारणा कृष्ण को मन से हटाना चाहती हैं और वही आ रहा है। यम नियम वही चाहती हैं कि इस घाट पर ना जाएं, पैर उधर ही चल रहा। तो ये लोग इन सब के द्वारा नाम रूप, ये हमारा नाम रूप और शरीर नहीं है, यही पर हम लोगों का बद्धमूल धारणा है कि मैं पंडित हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनी हूं, ये सब अभिमान है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये सब कुछ अभिमान है, यह भूल जाना पड़ेगा, और हमारा स्वरूप कृष्णदास है यह समझना पड़ेगा। गोपियां इसी प्रकार हमारे पति प्रति नित्य बुद्ध वृत्ति बुद्धि बोलिया निज देह गेह जानते पड़े, और वो हमारी लीला स्मरण करके, हमारा चिंतन करके सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है। मुनि लोग से समाधि दशा है, नाम रूपात्मक जगत, ये नाम और रूप का ये जगत है स्थूल, और अपनी आत्मा को भी नहीं जानते हैं, परमात्मा में मिला देते हैं। गोपियां क्या करती हैं, नित्य वर्तमान मेरे इस रूप को चिंतन करके अपने अंतःकरण की और बाहरी समस्त वृत्तियों के द्वारा केवल मेरा स्मरण करती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं, और हम लोग चेष्टा करने पर भी कुछ नहीं होता, एक मिनट होगा नहीं तो फिर होगा। एक तो कृष्ण की लीला ही नहीं याद आई, कब आज याद आएगी, कब जब भवावस्था होगी, अनर्थ दूर हो जाएगा और किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। उस समय ऊपर का शुद्ध सत्व जब हमारे हृदय में अपने आप कृपा करके यहाँ पर अवतरित होगा, उस समय सब चीजें अपने आप
ज्यादा नहीं लग जाए। अभी कितना हम चेष्टा करते हैं कुछ भी कृष्ण की न हो, महाप्रभु की लीलाएं हैं जो चैतन्य भागवत इत्यादि में चैतन्य चैतामृत में वर्णन, वही याद नहीं रहती स्मरण में। यदि कोई एक याद करे, स्मरण करे, मैं गोदावरी के तट पर हूं, देखा एक बाल सन्यासी वहां पर बहुत सुंदर उपस्थित हो गए, सूर्य के समान उसकी दिव्य ज्योति है देख रहे हैं, और एक महाराजा वेद की वाणियों से बंदित होकर के अपने बंदियों के द्वारा और आ रहे हैं, ढोलक इत्यादि बज रहे हैं, बाजा बज रहे हैं, और उनके अंग रक्षक और सब लोग आए, और वहां पर उन्होंने कपड़े अपने रखे, वहां पर बजने लगा, वेद की ध्वनि हो रही, लाखों हजारों ब्राह्मण लोग की स्तुति कर रहे हैं, और वो गोदावरी में स्नान करके और उसके बाल सन्यासी की तरफ में देख करके आकर्षित हो जाते हैं, उनको ठहरो ठहरो मैं अभी आ, बस केवल एक धोती पहना और उस बाल सन्यासी के पास में गए, हाथ जोड़ करके उनको घुटने टेक करके, वो तो बैठे थे ना ऐसे, बस वहाँ पर बैठे, हाथ जोड़ करके घुटने टेक करके बैठ गए। वो बाल सन्यासी ध्यानस्थ था, इनको देख करके आँख खोल दिया, खोल करके के रहा, आप रामानंद राय रामानंद हैं, मैं वही आपका दास, कैसे आपने जान लिया कि मैं राय रामानंद, कैसे जान लिया, जान कैसे लिया अंतर्जामी, तो बुद्धि के साथ में मालूम हो जाए, बताया था कुछ और नहीं, अरे गाने बजाने के साथ में इतने लोगों को आ रहे हैं, उस समय के वो गवर्नर जनरल ऑफ द डेकन थे वो, और इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा भारी पदाधिकारी आकर के हाथ जोड़ करके एक बाल सन्यासी के सामने आकर के बैठ करके स्तुति करेगा, ये उन्हीं के लिए संभव हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं। कितनी दीनता, महाप्रभु जी ने उनको अंक में धारण कर, इसके बाद में मैं इसीलिए आया, हमको आपसे मिलने के लिए उन्होंने कहा था सार्वभौम भट्टाचार्य, मैं आपके लिए प्रतीक्षा करूंगा, मैं वहीं पर रहूंगा, एक ब्राह्मण के घर वहीं पर रहूंगा, आप वहीं पर मुझसे मिलेंगे, एकांत में मिलेंगे, किसी को साथ मत लाएंगे, दूसरा व्यक्ति ना हमारी बात बात को सुनने वाला हो, वहां पर आ गए। महाप्रभु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कब आएगा कब आएगा कब आएगा, महाप्रभु जी उत्कंठित हैं, भगवान जिनके लिए उत्कंठित हैं, और वो कितने उत्कंठित हैं, कब समय हो कब समय हो, शाम नहीं हो रही, शाम हो गई, बस अकेले वहां से पहले दूर तक तो आए, कुछ लोगों के साथ में उनको खड़ा कर दिया और उनको वहीं से लौटा दिया, थोड़ी देर के बाद में रथ लेकर के आना, अब बस अकेले वही धोती पहन करके उनके चरण में जा रहे, महाप्रभु जी उत्कंठा से एकदम। अब कथा एकदम साधकोचित प्रथम स्थिति से लेकर और महाभाव की अंतिम स्थिति तक, प्रेम तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व,
रस
तत्व, विशद वर्णन उसका विवेचन, महारस राज भाव दिख रहा है। इन्हीं लीलाओं को भी स्मरण करें और क्या क्या वार्तालाप हुआ, कितना बड़ा भारी ये साधन होगा, करते हैं हम कुछ भी। सनातन गोस्वामी मिले प्रयाग में, उन्हीं का ही स्मरण करे, देखो कितना समय हमारा कट जाएगा, और उसमें जीव स्वरूप से लेकर के राधा स्वरूप से लेकर के सब कुछ प्रेम साधन अभिधेय सब काम हो पाता, कोई चिंतन करे ना, कोई साधक हो तब तो करेगा, इसलिए साधकों के लिए ये सब चीजें चिंतन करने की चीजें हैं, तब धीरे 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 मन कृष्ण में निविष्ट होगा और तब फिर होगा, उसमें कृष्ण की कृपा ऊपर से बरस करके हमारे हृदय में आती, इसी तरह से भाव आता है, शुद्ध सत्व हमारे हृदय में आता, ये सब उसके उपाय है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ऐसे ही खा पी करके और समय नष्ट कर देंगे अभिमान इत्यादि में सब, उससे नहीं होगा। कुछ साधन भजन होना चाहिए, इसका नाम है साधन भजन। इसलिए पति पुत्र इत्यादि संसार का कोई चीज भी बाधक नहीं है। बाधक कौन है? हमारी चित्त वृत्ति। हमारे दूसरा लोग आकर के हमारा समय नष्ट करते हैं और दूसरा लोग हमारे भजन में विघ्न देते हैं। हम एकांत में रहेंगे वन में तो वहां पर भी पशु पक्षी कीट पतंग ये सब नहीं है, जो मनुष्य के पुरुषों में ये सब भाव है उन जंगली पशु पक्षियों में वो सब भाव नहीं है, सब तो है। विघ्न बाधा यहाँ है तो वहां पर भी यदि डाल कर गिर जाएगी तो भी उसमें भी आप, एक आदमी हमारे बोले गुरु जी से हम जाएंगे वन में रहे पेड़ों के नीचे रहे, तो गुरु जी ने कहा जैसे यदि डाल टूट जाएगी तो क्या करेगा, डाल भी तो टूट जाएगी, तो फिर कोई उत्तर ही नहीं आया। साधु संघ से बढ़कर के और कोई हमारे लिए सुरक्षा की चीज नहीं है, इसलिए साधु संघ में रह करके इन सब साधन, ये कौन बतलाएगा? वृक्ष बतलाएगा एकांत वन में? ना राधा कुंड में जाकर के राधा कुंड में जी का पानी बतला देगा तुमको? राधा कुंड के पानी चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है, वो अभी तुमसे बातचीत नहीं करे जब तक इतना स्थूल है। उसको ग्रहण करने के लिए वैसी हमारी योग्यता होनी चाहिए, तब इसलिए कह रहे हैं। साधारण मुनियों की तो बात क्या, ऐसे ऐसे सनक सनंदन इत्यादि से गोपियों की जो सहज समाधि है जिसमें अपने नाम इत्यादि सब, गोपियां किंतु नाम भूलने की जरूरत नहीं है, गोपियां अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। हम लोगों को अपना नाम, अभी का नाम हमारा नाम में, अभी का शरीर हमारा नहीं है, अभी की जो डिजायर्स हैं इच्छाएं हैं वो अपनी इच्छाएं हैं, इसलिए इसको इस सबको भूलने की जरूरत है। इसलिए त्रिजगत मोहन विचित्र लीला स्तंभ स्वरूप अनुसंग बलवत धाम भी बुद्धि गोपियों का कोई भी नाम रूप गुण ये सब जड़िया नहीं है, उनको भूलने की आवश्यकता है ना, उनकी स्मरण की आवश्यकता है, किंतु मुनियों को अपना ये शरीर है उसको भूलने की जरूरत है, इसलिए गोपियां कभी नहीं भूल सकती। अतएव अपने पति पुत्र इत्यादि, अपने देह व आत्मा तक को भी, अपने पति इत्यादि को नहीं जानते, पुत्रों से कोई संबंध नहीं, पुत्र है ही नहीं है उनके, और जिनको है उनको पूर्व राग तक है, फिर वो गोपियों के संग में वो भी नित्य सिद्धा हो जाएंगे। इसलिए गोपियां इस लोक की परलोक की कोई चीज की चिंता नहीं करती, किसी चीज की चिंता नहीं करती, चिंता करती हैं किसकी? बस कृष्ण सुख की चिंता करती हैं, कैसे कृष्ण सुखी हों, और कोई चीज की चिंता नहीं करती। जैसे नदियां समुद्र में प्रविष्ट हो जाती हैं और सब कुछ छोड़ देती हैं, ऐसे ये गोपियां हमारे अंदर में प्रविष्ट हो जाती हैं। प्रविष्ट माने हमारे चिंतन में तदात्मिका हो जाती है। इसलिए ऐसे मुनियों से भी ये लोग बहुत सिद्ध हैं। कृष्ण ने कहा तुम लोग हमारा ध्यान करो, मैं सर्वत्र ही उपलब्ध हूं, मैं दूर थोड़े ही हूं। तो गोपियां हंसने लगी, कैसे? अवज्ञा से हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? अरे हम लोगों को ये कहते हैं जी हमारा स्मरण करो, हम तो तुम्हें भूल जाना चाहती हैं और नहीं भूलती, और तुम हमें शिक्षा दे रहे हो कि तुम हमारा स्मरण करो, हमारा ध्यान करो, हमारा अंधकूप कहीं है? हमारा तो अंधकूप है ही नहीं है, वो संसारी लोग हैं जो आपको भूले हुए हैं, वो संसार कूप में। और हम लोगों को संसार को बचपन से ही हम ध्यान नहीं, आपके हाथों के साथ में हाथ मिलाकर के खेली है, नित्य की है बचपन से ही, एक साथ में सब काम और वार्तालाप साक्षात रूप में राष्ट्र की स्थिति में हम आपके कंधा पर चढ़ी है, और आप कहते हैं कि हमारा स्मरण करो। हमें स्मरण नहीं करना चाहते, बल्कि आप हमारे मन पर, हमारा मन ही गंदा बना है, वहीं पर आप प्रकटित हो। कहते हैं मुनियों के लिए मुनि लोग, कोई कोई मुनि चारों तरफ में आग लगा देते, अंधकार हो गया कितना लगा, मुनि लोग आग लगा देते हैं चारों तरफ में और बीच में बैठ जाते हैं, आग उनको जलाती नहीं है बल्कि उसी में उनका साधन, ये आग जलने पर भी मालूम न हो, ये किस लिए करते हैं प्रैक्टिस, आग जलने पर भी हमको मालूम न हो अर्थात संसारिक ताप हमको स्पर्श न करें, इसलिए इनको आग में बैठने की जरूरत है। आग तो जल रही ऐसी जैसे समस्त विश्व तीनों लोग जल जाए,